आस्तिक तेज कदमों से बढ़ता हुआ जा रहा था। उसके पीछे करीब 10 लोग थे और सभी ब्लैक कमांडो थे। सभी के पास हथियार थे और आस्तिक गुस्से में आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसकी सिक्योरिटी टीम से उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अरुणिमा के बारे में उन्हें कुछ पता चला है, इसीलिए वो गुस्से में अपने सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ आया था। पिछले कुछ घंटों में आस्तिक ने पूरा शहर तबाह करके रख दिया था। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट और पानी वाले जहाज से लेकर छोटे रास्ते तक जो शहर से बाहर जाते हैं, आस्तिक ने हर जगह पता कराया, लेकिन अरुणिमा नाम की कोई भी उस पर सवार नहीं थी। अभी एक घंटे पहले आस्तिक को खबर मिली कि शायद अरुणिमा मिल गई है, इसीलिए आस्तिक जल्दी से एयरपोर्ट गया। पर जब उसने देखा कि वो अरुणिमा नहीं थी, तो उसने गुस्से में अपने आदमी को खूब डांटा, क्योंकि ये नाम की गलती की वजह से हुआ था। उस लड़की का नाम अनिमा था और आस्तिक की सिक्योरिटी ने उसे अपनी फ्लाइट में चढ़ने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी फ्लाइट चली गई और वो आस्तिक पर बहुत नाराज भी हो रही थी। लेकिन आस्तिक के पास इन सब के लिए टाइम नहीं था। उसने हाथों में इतना पैसा दे दिया कि वो खड़े खड़े अपने लिए पूरी की पूरी फ्लाइट खरीद सकती है, और वो तेजी से ऑफिस की तरफ आ गया था। शेरा ने जैसे ही आस्तिक को देखा, उसने तुरंत कहा, सर, हमें पता चला है कि मैडम शहर से बाहर नहीं गई हैं, वो अभी भी इसी शहर में हैं, और अस्पताल के बाहर सीसीटीवी फुटेज में हमने उन्हें देखा है। आस्तिक ने गुस्से में कहा, ये बात तुमने पहले भी बताई है कि अरुणिमा को अस्पताल के बाहर जाते हुए तो देखा, पर उसके आगे वो कहाँ गई? लेकिन शेर ने तुरंत लैपटॉप की स्क्रीन आस्तिक के सामने करते हुए कहा, सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो देखिए। आस्तिक ने देखा तो उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया था और आंखें लाल हो गई थीं। अरुणिमा हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है, और उसके बाद वो दोनों ही अस्पताल से एक साथ बाहर निकल जाते हैं। आस्तिक ने गुस्से में उस फुटेज को देखा जहां पर अरुणिमा हॉस्पिटल से बाहर जा रही थी। तभी शेर ने दूसरा वीडियो चला दिया जो हॉस्पिटल से थोड़ी ही दूरी पर एक कॉफी हाउस का था, जहां पर अरुणिमा और वो औरत अभी भी एक टेबल पर बैठे एक दूसरे के सामने बातें कर रहे थे और कॉफी पी रहे थे, और उसके बाद वो औरत अरुणिमा को अपने साथ अपनी गाड़ी में ले गई। रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज से उस औरत की गाड़ी का फुटेज मिल गया था और उसका गाड़ी नंबर भी मिल गया था। आस्तिक ने गुस्से में शेर को देखते हुए कहा, पता चला कहाँ है अरुणिमा? शेर ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, हमें पता चल गया, मैडम इस लेडी के साथ है और इस लेडी की जो गाड़ी है उसका भी एड्रेस हमें मिल चुका है। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, गाड़ी निकालो और चलो। आस्तिक ने जब ये कहा तो शेर के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने आस्तिक को देखते हुए कहा, सर, हमें लगता है कि हमें वहां पर बिना सिक्योरिटी के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी नंबर किसी छोटे मोटे आदमी का नहीं है। आस्तिक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो गाड़ी किसकी है और वो एड्रेस किसका है, मुझे सिर्फ मेरी बीवी चाहिए। अगर वो कोई बड़ा और अमीर बिजनेसमैन है तो भी मेरे सामने दो कौड़ी का ही है। आस्तिक रायचंद के सामने किसी की औकात नहीं। लेकिन नीरज भी वहीं पर था और वो भी जानता था कि शेर क्यों आस्तिक को रोक रहा था। नीरज ने शेर के पास आते हुए कहा, सर, शेरा सही कह रहा है, हमें हमारी ब्लैक टीम को रेडी कर लेना चाहिए। मैडम इस वक्त जहां पर है वहां से उन्हें लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आस्तिक हैरानी से अपने आदमियों को देख रहा था। आस्तिक के लोगों ने कभी भी उसे इस तरीके से रोकने की कोशिश नहीं की और वो बात उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसने नीरज और शेर को देखते हुए कहा, क्या बात है, क्या छुपा रहे हो मुझे? कहाँ है अरुणिमा और कौन है वो लोग जिनके पास इस वक्त अरुणिमा है? स्पाइडर, आस्तिक की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और उसके कदम अपने आप पीछे हो जाते हैं। वो हैरानी से शेर को देखता है। वो नाम उसने पहले भी सुना था, लेकिन स्पाइडर और आस्तिक दोनों की दुनिया अलग थी। हालांकि दोनों का प्रोफेशन एक ही था, लेकिन दोनों ने अपने अपने काम को एक दूसरे से बहुत अलग रखा हुआ था। जहां आस्तिक इंडिया में एक बड़े गैंग लीडर के रूप में सामने आ रहा था, तो वहीं पर स्पाइडर रशियन माफिया के लिए एक खतरनाक माफिया लीडर था। आस्तिक के हाथ मुट्ठियों में कस गए थे। वो तेजी से बाहर की तरफ निकला। नीरज और शेर जल्दी से आस्तिक के पीछे जाने लगे। शेर ने तुरंत जेड प्लस टीम को आस्तिक के लिए तैनात कर दिया था और नीरज उसके साथ पूरी तैयारी के साथ जा रहा था। लेकिन जब वो लोग गाड़ी के पास पहुंचे तो नीरज ने एक बार उसे रोकते हुए कहा, सर, आप एक बार फिर सोच लीजिए, स्पाइडर कोई मामूली इंसान नहीं है, वो सबके सामने रहकर भी अपराध करता है। आज तक स्पाइडर के बारे में किसी को नहीं पता चला और ना ही उसके काम के बारे में। तभी तो वो अपनी फैमिली को लेकर खुलेआम शहर में ऐसे रहता है जैसे कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है। उसकी फैमिली भी उसकी असली पहचान के बारे में नहीं जानती है और सबके सामने एक अच्छा इंसान बनने का दिखावा करते वो पीठ पीछे रशियन माफिया के लिए काम करता है। आस्तिक ने गुस्से में गाड़ी पर लात मारते हुए कहा, स्पाइडरमैन को अगर मैंने दीवार के जाले में नहीं चिपका दिया ना तो मेरा भी नाम आस्तिक रायचंद नहीं है। मुझे परवाह नहीं है वो रशियन माफिया के लिए काम करता है, चाहे किसी भी बड़े माफिया गैंग का लीडर हो, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उसके पास मेरी अरुणिमा है और कोई भी मुझे मेरी बीवी को अपने साथ ले जाने से नहीं रोक सकता है। देख लूंगा उस स्पाइडर को, अगर मुझे मेरी अरुणिमा को वापस लाने के लिए उस स्पाइडर के वेब में जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। लेकिन सर, स्पाइडर कोई मामूली इंसान नहीं है, उसके साथ रशियन माफिया है और हम इंडिया में है, नीरज ने आस्तिक को समझाते हुए कहा। तो आस्तिक ने तुरंत नीरज को गुस्से में देखकर चिल्लाते हुए बोला, अगर वो रशियन माफिया है तो रशिया में जाकर अपना गैंग ऑपरेट करे, ये इंडिया है और इंडिया का एक ही किंग है जिसका नाम है आस्तिक रायचंद। मेरी जगह पर मेरे शहर में रहकर अगर स्पाइडर को लगता है कि वो अपने जाल को यहाँ फैल सकता है तो वो उसकी बेवकूफी है। और हाँ, इलाका कुत्तों का होता है, शेर का जंगल होता है और इस जंगल का शेर इस वक्त बहुत घायल है। देव का घर, शहर से बाहर देव का वो शांत इलाके में बसा हुआ छोटा सा घर उसे बहुत प्यारा था। यहाँ पर वो अपने काम और बाकी सब चीजों से दूर अपनी फैमिली के साथ आराम से रहता था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अरुणिमा बच्चों के साथ बहुत खुश थी। मीरा की दूसरी प्रेगनेंसी का सुनकर भी उसे बहुत खुशी महसूस हुई थी। आखिरकार देव अपने जीवन में आगे बढ़ गया और उसने वो सब पा लिया जिसका वो हकदार था। रात काफी हो गई थी, मीरा को इतनी देर तक जागना सही नहीं था और बच्चे भी सो गए थे, लेकिन अरुणिमा को नींद नहीं थी। रात के समय वो छत पर टहल रही थी और चांद की रोशनी में अपने सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रही थी, जब उसके पास एक कप आता है। अरुणिमा ने चौंक कर देखा तो पीछे देव खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए उसे कप देते हुए कहता है, अभी भी आदत है या छोड़ दी? अरुणिमा ने देखा तो उसमें हॉट चॉकलेट था। उसने मुस्कुराते हुए देव के हाथों से वो हॉट चॉकलेट का कप लिया और कहा, कुछ आदतें वक्त के साथ बदल जाती हैं, लेकिन पुरानी आदत अगर एक बार फिर से दोहराई जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अरुणिमा और देव दोनों छत पर खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। अरुणिमा ने धीरे से देव को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी देव।
देव के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। उसने नाम में सर हिलाया और कहा, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा ही हुआ कि उस समय तुमने कुछ कहा नहीं। अगर तुम कुछ कहती तो शायद मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं देता, और आज हालात ऐसे नहीं होते जैसे कि हैं। अरुणिमा बोली, तुम और मीरा एक साथ काफी अच्छे लगते हो। देव ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद तुम सही कह रही हो। मीरा के साथ मैंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं था। कॉलेज में जब हम सब एक साथ थे तो मैं मीरा को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त के रूप में देखता था, क्योंकि पसंद तो मेरी तुम थी। लेकिन जब तुम जिंदगी से चली गईं तो मेरे अकेलेपन ने मुझे इस तरीके से घेर लिया कि मुझे एक सहारे की जरूरत पड़ गई, और उस वक्त मीरा थी जो मुझे सहारा देने के लिए आगे आई थी। सच कह रहा हूं अरुणिमा, अगर उस समय मीरा ने मुझे नहीं संभाला होता तो आज मैं जहां हूं वहां नहीं होता। उसने मेरे गुजरे कल को भूल कर मुझे एक्सेप्ट किया और मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तो वो मेरा भी फर्ज था कि मैं उसे उसके हिस्से की सारी खुशियां देता। मुझे वक्त लगा, लेकिन देखो आखिरकार हम अपनी फैमिली बनाने में कामयाब हो गए। अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं खुश हूं तुम दोनों के लिए, और मैं चाहती हूं तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। पर तभी देव को कुछ याद आता है और उसने तुरंत कहा, लेकिन अरुणिमा तुम्हारा क्या? मतलब मैंने तो सुना था कि तुम्हारी शादी बहुत अमीर परिवार में हुई थी, तो फिर तुम ऐसे अचानक से? मेरा मतलब है कि तुमने कहा कि तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? अरुणिमा के चेहरे पर घबराहट आ गई। वो तुरंत बोली, वो अब हम साथ में ही हैं। देव ने हल्की सी आवाज में कहा, ओ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड अब अलग हो चुके हैं। वैसे नाम क्या है तुम्हारे हस्बैंड का?